جیسا کہ آپ نے وہ سبق سنا، تم کر دو پل میں پار، ہو جا رضا تری، مہر تری مہاراج جس پہ رضا تری. اس پرم پتا پرماتما ست پرش سے عرض ہے کہ تم جس پہ راضی ہو جا مالک، جو چاہ بس ہو کر سکتے ہو. کال کشٹ سے جیو دکھی سن، من تمہرے ترس آیا کہ نہ، ست لوک کو چھوڑ کے ستگرو اس کال لوک میں آیا کہ نہ. تپت شلا پہ جیو جڑے تھے، ان کو دیکھ دکھ پایا کہ نہ، وہاں خوب ہوئی تکرار نرنجن گیل تری، تم کر دو پل میں پار، ہو جا رضا تری، مہر تری مہاراج جس پہ رضا تری. دھرمداس ایک بہت ہی دھنوان پرش تھے، سیٹھ تھے، اتنے سیٹھ تھے کہ باندھو گڑھ شہر میں رہتے تھے، اور باندھو گڑھ کے نواب راجا جو ہوتے تھے وہ دھرمداس کے پریوار سے وتیے سہایتا پراپت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. وہ اتنا پیسے سے پریپورن وہ ہنس آتما پھر بھی پرماتما میں روچی ایک وشیش ڈنگ کی تھی. باندھو گڑھ متھرا سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے، اور آج سے 550 برس پہلے کی پورو بات ہے. اب ہم باندھو گڑھ ہو کے آئے ہیں، جبکہ سڑکیں پروپر بن گئی ہیں، اور گاڑی میں بھی وہاں پر بہت سمے لگیا ہمیں جان میں، یعنی کار کے دوارا. اور ایسے اوبڑ کھابڑ وہاں پر راستے ہیں، کبھی نیچے اتر گئے پہاڑ ہیں اور کبھی اوپر نہ چڑھ گئے، اور کبھی ایسے بانگے ٹیڑھے سے کسوتے جنگلام کا ہے، ادھر اتنی اونچی پہاڑ نظر آ رہا ہے تو نیچے سائیڈ میں نالا گھنا ہے. اس میں وہ نالے اتنے تھے جن کو گھاٹ بولتے ہیں، اور وہ ہمت کر کے وہ پرمپتا پرماتما کی پیاری آتما وہ دھرمداس سیٹھ باندھو گڑھ سے پیدل چلیا اور متھرا کے اندر پہنچ گیا. کتنے دن میں پہنچا ہوگا؟ میرے خیال میں تو 1 مہینہ لگ گیا ہوگا اس پرماتما پیاری آتما نے، کیونکہ اس میں نہ کوئی ڈنگ کے راستے تھے، اور بارش ہوگی تو وہ پانی تو بھر جائے. راستے میں بھیانک جنگل آتے تھے، کیونکہ جنگل پہلے ویسے نیرے ہوتے ہویا کرتے تھے، اب بھی بہت رہ رہے ہیں وہاں پہ. اب بھی وہاں پر نیشنل پارک راشٹریہ ادھان بنایا ہوا ہے سرکار نے، ایم پی سرکار نے، اور اس میں شیر اور چیتے دوبارہ چھوڑ رکھے. اتنا جنگل ہے وہ بنا پریوگ کیا جانے والا، اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا، پریوگ نہیں کیا جا سکتا، ایسا کھیتر ہے وہ پہاڑی کھیتر. تو وہاں پر انہوں نے سرکار نے جو ہے شیروں کے لیے وہاں پر اب دوبارہ وہاں پر واس دیا شیروں کو، اور دوسرے جو چیتے وغیرہ ہیں اس میں چھوڑ دیے. اور پہلے سوتے نرے ہوئے آ کرتے تھے، اب اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کر کے پرماتما کو پانے کے لیے سر دڑکی بازی لا کر متھرا پہنچ گئے. متھرا میں آ کے بھگوان کرشن کی بہت تگڑی سادھنا کیا کرتے تھے، رام کرشن کے اپاسک تھے، جیسے عام ویکتی ہندو جو ہوتا ہے بھگوان شیو کی بھی سادھنا کرتے ہیں، رام کی بھی سادھنا، وشنو جی کی بھی سادھنا، ماتا کی اپاسنا بھی، اور تیرتھوں کا بھی ہم پورن روپ سے اپنا جس کا جتنا بیونت ہے وہ تو ضرور کرتا ہے. انہوں نے گرو بنا رکھا تھا، روپداس نام کا ان کا گرو دیو تھا. روپداس جی نے کہا بیٹا پرماتما یہ منش شریر کبھی کبھی دیتا ہے، سوت بیٹھا ہے یہ انسان کا، اس کو ایسے نہیں کھونا چاہیے، یہ مایا تو میرا نہ کتنی بار ہولی، اور آج شریر ہمارا چلا جائے گا تو مایا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، تو اس میں جتنا بھی پندان تو کر سکتا ہے، تیرتھ یاترا کر سکتا ہے، ایشور کو بھج سکتا ہے، تو یہ کمائی اپنے ساتھ رہے گی. تو ہنس آتما تھا، परमात्मा में विशेष रुचि होगी, रामकृष्ण जी का जाप करना और शालिग्राम की पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना, गीता जी का पाठ करना उसका दिनचर्या थी। उसकी ऐसी दिनचर्या थी तो कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष इतनी पुण्यात्मा का इतनी श्रद्धा देखकर उसको पता चला कि ये अनजान आत्मा गलत साधना पर लगा हुआ है। तो कबीर साहब मथुरा में आकर प्रकट हो गए एक जिंदे के रूप में। जिंदे महात्मा ज्यादातर मुसलमानों में होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक काला सा टोप, ऊपर इतना लंबा चोटा टोप का, इतनी लंबी टोपी बनाते हैं लंबी लंबी वैसे कपड़े से की, और तयमंद बांध लेते हैं और एक ऊपर जैसे कपड़ा कुर्ता पहनते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने वो रूप नहीं बनाया था, फिर बाद में बनाते हैं। पहले ऐसे साधारण से भगत के रूप में, और धर्मदास को देखा सुबह उठा एक स्थान लिपया पहले तो गोबर गऊ के गोबर तय, और गंगा उसमें जल छिड़क्या पवित्र कुएं का लाके, और फिर वहां पर भोजन पकाया, भोजन पका के खाना खाया। हाँ, उससे पहले उनकी पूजा करी, वो लीप ल्याप के वहां पर मूर्तियां रखी भगवान वो ठाकुर जी की, उनको नवाया, नवा के उनके कपड़े पहनाए, मुकुट रखा, माला डाली, मुकुट रखा, तिलक लगाया। उसके बाद फिर अपना गीता जी का पाठ करने लग गया। कबीर साहब इतनी दूर बैठे देख रहे हैं जैसे कोई भक्त देख रहा हो। तो थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी पूजा से निवृत्त हो लिया तो कबीर साहब आकर कहने लगे, महात्मा जी क्यों उसने माला गाल रखी गल में और वैष्णो साधु जैसा रूप बना रखा, तिलक लगा रखे? किसने? धर्मदास जी ने। कबीर साहब कहने लगे, भगत जी महाराज जी आपको तो लगता है बहुत ही ज्ञान है परमात्मा के बारे में, और मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, मैंने कोई सतमार्ग दर्शन नहीं मिल दर्शक नहीं मिल लिया। तो धर्मदास कहने लगा, भाई मैं बता दूंगा तेरे को, और जैसे मैं कहूं ऐसे कर लिए, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगजीमत ने ढूंढू था परमात्मा कोई ऐसा मन व्यक्ति मिलावा, ऐसा संत मिलावा, मेरा बेड़ा पार हो है। क्या करते हो? उन्होंने बताया कि मैं गीता जी का पाठ करता हूं, 68 तीर्थ करता हूं, 68 तीर्थ करता हुआ अब मैं मथुरा में आया हुआ हूं, और भी अभी बाकी तीर्थ मेरे बकाया से सारे करके आऊंगा। कितने दिन लगेंगे? अक्के मेरा 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, 6 महीने। तो आज अगर कोई 68 तीर्थ करना चाहे अपनी कार में जाकर तब लगते हैं प्राणी को, और 60,000 रुपये लग गए, अब 30 में भी ना सद है। 68 तीर्थ पर जाने के लिए कम से कम 6 महीने और 60,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो वो कहने लगा, भाई ठीक है जी, बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, और क्या करते हो? कि गीता जी का पाठ करते हैं हम। अच्छा जी, और शिव शंकर का शिवलिंग पूजा करते हैं, गुरुदेव की सेवा एक विशेष ढंग से आदर भाव से करते हैं, और ऐसे ही तू कराया कर, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा जी, तो कबीर साहब कहते हैं, जी एक बात बताओ, इस तीर्थ के अंदर जिसमें हम स्नान करने जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे फला फला तीर्थ पर गया था, वहां देखा कि इतना गंदा पानी और उसमें जीव जंतु निरे, और वो जीव जंतु जब उस तीर्थ में पहले ही विद्यमान थे, यानी वहीं पर रह रहे थे, तो वो तो महाराज जी कति मुक्त हो जाएंगे, उनकी मुक्ति तो जरूर हो जाती होगी। अब धर्मदास जी बड़ा सहम सा गया कि बात तो इसने इसी कर दी कि जो पहले ही जीव उसके अंदर विद्यमान है और जो 24 घंटे उसके अंदर रहे वो नाव है, वो तो महाराज जी सब तो पहले पार होते होंगे फिर, और जो स्नान करने प्राणी जाता है तीर्थ में जब स्नान किया जाता है तो सूक्ष्म जीव जो पानी के अंदर दिखाई भी ना देते और वो हाथों की रगड़ से मार दिए जाते हैं, क्या महाराज जी वो पाप नहीं लगेगा? भगवान कबीर साहब उस जीव आत्मा को महाराज जी कहकर पुकार रहा था कि वो राजी होगा, बता दे सारी बात को। वो धर्मदास कहने लगा, भाई जी पाप तो देखो होता ही होगा, जो पाप तो पाप है, जीव हिंसा तय कीता कर ले, इतना ज्ञान उसने जरूर था। और एक बात बताओ, रामकृष्ण जब नहीं थे तो क्या परमात्मा पहले था को नहीं? राम तो त्रेता में, कृष्ण जी द्वापर में, उस ईश्वर का नाम तो जी कुछ और ही होगा जो सतयुग में उपास्य था, नाम से वो मुक्ति बताता है। धर्मदास एकदम सहम सा गया, बोला हम व्रत करते हैं एकादशी का। अच्छा व्रत करते हो, व्रत करने से क्या लाभ होता है? कहते स्वर्ग प्राप्ति होती है। कबीर साहब कहने लगे, एक बार अकाल पड़ा था, इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि सारी दुनिया आंधी हो कमरी थी और अन्न के दर्शन भी ना हुए थे, पत्ते भी खत्म हो गए थे वृक्षों के खा खा के, और फल तो मिले कहां थे। उन जैसा व्रत को मेरे ख्याल कोई कर भी नहीं सकता, आप तो कदे भी नहीं कर सकते धर्मदास जी। और उसमें सारी एक कमते लेकर और माउसताई और फिर एक कमते लेकर पणवासी ताई सारी तिथि आ गई थी, और अंधे होकर कुत्याली मौत मेरे थे, मेरत या तसली होती कोई ना, हूं आपको हो सो मैं नकारा करता कोई नहीं। धर्मदास कहने लगा, हम जीव हिंसा नहीं करते कोई भी, और ऐसे बड़ा हमारा सबसे उत्तम पंथ है वैष्णो धर्म। कहने लगे, आप कहां से चले हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कितनी दूर है यहां से? कि जी हजारों किलोमीटर, उस समय कोस होते थे कि लगभग 400-450 कोस पड़ता है, और पैदल आए। कहां जी पैदल आया। कितने जीव मारे रास्ते में आपने? आप अपने स्वार्थ की खातर निकले, आत्म कल्याण भी एक स्वार्थ ही है, और वो बेचारे अपने बच्चों के चुगे खातर कोई कीड़ी चीटी अपने बिल से निकली, और वो तू ऐसे मारा भगत जी, उनका भी ले खतरे सिर पर होगा। यहां पर गीता जी में लिखा कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों भोगने पड़ेंगे। धर्मदास ने बोला, जी न्यू तो लिख रखा है, तो फिर ये दोनों भोगने पड़ेंगे भाई तुझे। ये तीर्थ का मान ले पुण्य होया एक, और इसमें दो घड़ी स्वर्ग मिलेगा, और इन पापों का प्रतिफल तुझे 1000 नरक मिले, 1000 वर्ष नरक मिलेगा। बता इस तीर्थ ने कैसा तू भाई, मेरा तो यह समझ में आई कोई ना। कहने लगा, तू तो बात बहुत बनाता है, यानी जब ना वो ज्ञान तत्व महाराज जी काबू आए कोई ना, तो थोड़ा सा गर्म हो गया महाराज, अंतर ध्यान हो गए, यानी एकदम दिखाई नहीं दिए सामने तय। अब धर्मदास ने सोचा, रहने के आकर भगवान ना मेरा किस रूप में आ जा, और आपने तो चाड़ा कर दिया, मैंने तो आज जुल्म कर दिया, भगवान आए थे ओए है, और पूछना चाहिए था अग्नि फिर मार्ग कौन सा है, आप सच आप बता दो, जबकि मेरे सारे आंकड़े खत्म, और उसकी बात 100 की 100 वजनदायक, और फिर भी अभी मानवस नहीं माने, अब ये फिर भी ना माने, अब ठीक है मेरे हिसाब तो है, अब ये फिर भी ना माने, तो भाई अंतर ध्यान हो गया महाराज जी। अगले दिन अब वो एकदम झटका सा तो लगे उसको, सवेरे सवेरे वो फिर ना दो के, और ऐसे ही अपना लीप के वो करके सारी प्रक्रिया, और खाना बनाता है। खाना बनाने लग्या तो चूल्हे में लकड़ी ला रखी थी इसी मोटी, और उसके साथ छोटी छोटी लकड़ियां एडिशनल और लगाते हैं ताकि वह आग बढ़े जा। सारा खाना बना लिया उसने अपना भोजन, और स्वयं बनाया था, तो वह लकड़ी जड़ती जड़ती जब उसके सामने आई, बीच से लकड़ी थोथी थी, और उसमें देखा कि वह पाछे तक काली हो रही सारी चीटियां थे, उसमें से कीड़ियां निकल रही चीटियां, और अपने बच्चे मुंह में ले रही अंडे, और कुछ उसका माँ जो बाहर लकड़ी के पीछे एक गर्म होने से एक विशेष पदार्थ छोड़ देती वह लकड़ी, और वो पानी सा इतना उबल रहा होता और उसमें पड़े और उसके सामने पटर पटर जैसे चटक पटक होकर मर रही हैं। और उसने देखा उत्तरे की धर्मदास के विचार आया कि या तो कम से कम भी 3 फुट की लकड़ी थी और इसमें सारी में ये कीड़ी थी, तने तो जुल्म कर दिया, इतने प्राणी मार दिए, मेरे ख्याल भी नरक भी परमात्मा ने न्यारा बनाना पड़ेगा मेरी खातिर। ओए होए होए, अब के विचार करा, क्योंकि आस्था परमात्मा में बहुत गणी थी, ईश्वर ने विचार अब पे मतलब वो प्रेरणा आई सद्भावना पूर्वक कि आज मैं इस अन्न को नहीं खाऊंगा, इस सारी भोजन को बात को किसी महापुरुष को खिला दूंगा, संत को, मेरे पाप कट जाएंगे, मेरा पीछा छूटा, मैं नहीं खाऊं इसको। आज अब उस अन्न को लेकर उस थाली में धरकर और चलता है सामने बंदी छोड़ कबीर साहब, एक जिंदा रूप में बैठ जाते हैं, जो ऊंचा सा टोप डाडी बड़ी हुई है और वहां पर बैठ जाते हैं आके एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास ने सोचा महाराज जी वो बैठे, लेकिन वो शकल वो नहीं थी जो पहले दिन वार्ता हुई थी। धर्मदास ने जाकर नमस्कार किया और उनके आगे वो भोजन की थाली धर दी, महाराज जी भोजन पाओ, लगे आपने भूख लगी है। कहा भाई भूख का टाइम हो रहा है 10 बज गए दोपहर सुबह के, भूख तो लगी धर्म भगत जी। हाँ धर्मदास नाम कहा महाराज जी ने कि धर्मदास भूख तो बहुत लगी हुई सब आई। अब उन्होंने सोचा धर्मदास का है ये, यूं क्यों मेरा नाम जान गया। फिर ने सोची हो सका है तीर्थ पाया होगा, किसी ने मुझे पुकारा होगा, इसने याद कर लिया होगा, ये मन बड़ा उस्ताद सा, जल्दी सी ठिकाने बात ना आन नहीं दे। तो कहने लगे भोजन पा लो महाराज जी। अकलिया भैया महाराज जी ने वो ऊपर का जो छालना सा ऊपर डाल रखा था कपड़ा वो उठा दिया, हटा के लोटे में तो अपने में तो पानी लेके ऐसे कोई मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए, वो सारी की सारी सब्जी और रोटियां की कीड़ी बन गई, चीटी बन गई और काली थाली होगी कतई। और नो निकलना बेचारी वो अपने बच्चे मुंह में लेकर, नो बोला धर्मदास तेरे तो कसाई भी चोखा, इतने पाप के भोजन को और मुझे खिलावे और रोज तो प्रतिदिन खावे। और फिर उसी स्वरूप में आगे जो पहले दिन वार्ता करी थी, तू क्या कहे था मैं जीव हिंसा नहीं करता, इतनी जीव हिंसा यहां पर होती है भगत जी, तेरे पर गिने भी को ना जा, और इतना पाप तेरे सर पर धरते ही उकाल बली और बहका रखा तुम्हारे को कि तुम पुण्य कर रहे हो, पुण्य थोड़े और पाप गणे। धर्मदास तो चरणा में पढ़कर रोएगा, छोड़ जाए को नहीं, छोड़ जाए को नहीं। महाराज जी कहते हैं सुन भाई मैं खुद स्वयं परमात्मा हूं, पर न्यो विश्वास हो क्यों करे, क्यों नहीं होवे, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान ऐसा गढ़ रखा कि परमात्मा आकार में आता है को ना, उसकी परिभाषा न्यारी है, उसका तो रूप ही कुछ और होश है, वो तो देखा ही नहीं जाता। जब परमात्मा का आकार नहीं तो देखोगे क्या, जब उसका आकार मानते ही नहीं, आकार बिना वो दिखे के, अगला समाधि लाओगे, समाधि क्या खातिर लाओगे, परमात्मा को निराकार मानो फिर देखने खातिर समाधि लाओ, तो दोनों बात कैसे बने। दिखेगा तो प्रेमी आकार में आना पड़ेगा, उसने ना कोई ना दिखाई दे। समाधि क्या होती है थोड़ा वर्णन करेंगे अभी आगे चल के, अभी ये प्रकरण पूरा करते हैं। धर्मदास जी को महाराज बताते हैं सुन भाई बेटा खड़ा हो, नो रोवा मत ना, बात सुन मेरी ध्यान पे। कबीर साहब ने जब कहा मैं परमात्मा हूं, धर्मदास ने बोला महाराज जी यह बात मेरा जस्ती को ना, क्यों नहीं जस्ती, आप रोटी भी खाओ, आप पानी भी पियो और चलते फिरते नजर आओ और मनुष्य कैसे दिखो, मैं क्यों कर मानू आप भगवान हो। बंदी छोड़ कहते हैं हम साहेब सतपुरुष हैं, कबीर साहब बोले मैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष हूं, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमार ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम सब जीव वहीं से आए थे भाई। जिंद कहे धर्मदास से तुम सत शब्द गनसार, गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लख, ये खुद शंकर शेष हमारा जो स्थान है ना वो बहुत दूर है, ना शिवजी ने पा लिया, ना ब्रह्मा ने पावे, ना विष्णु ने पावे, हम विधि बताओ भाई नहीं पावे। और आम व्यक्ति भी जा सके, भाई भी जा सके, बहन भी जा सके, और बूढ़ा भी जा सके। जब हमने 10 मंजिल की इमारत में जाना है, 10 मंजिल के मकान पर ऊपरली छत पर पहुंचना है मंजिल में, तो कोई तो पीछे से चढ़ रहा है, कोई बराबर से चढ़ रहा है, और कोई सामने से लटक रहा है, कोई झांकी तक पहुंच गया एक मंजिल में, वहां से दड़ पड़ा। ये रास्ता उस वहां तक पहुंचने का नहीं है। अगर किसी के पास चाबी है, वो मालिक आवे और अपने महल में ताला खोले और जीने में कह बूढ़ा ठेरा लूला लंगड़ा सहज सहज और पहुंच जावे। इसी प्रकार विधि ठीक हो परमात्मा पाने की तो आम व्यक्ति गृहस्थी सबसे पहले पार हो सकता है। अगर परमात्मा वही लोग पावे जो जंगल में बैठ जाते हैं, तो आम क्या खातिर पाठ देखें, फिर किस लिए गीता के पाठ न करते हैं, किस लिए हम राम राम कर रहे हैं, तो हमारा तो नंबर है कोई ना वकत देवी। तो गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने यही भ्रम तोड़ा, भाई इस अंधेरे नटा दो, परमात्मा पाने के लिए कितने भी संत वो सब गृहस्थी भी पार हुए हैं। जैसे दरू को पार मानते हो और प्रहलाद को पार मानो, दरू ने 5 साल की आयु में, 5.5 साल की आयु में परमात्मा पाया, उसके बाद शादी करवाई 16 साल की आयु में, और शादी करवाकर फिर 30,000 वर्ष राज किया पृथ्वी पर, क्योंकि उसका बड़ा भाई उत्तम मर चुका था, जिसको उत्तानपात ने राज दे दिया था उसकी मौसी के वचनबद्ध होकर। वो जंगल में लड़ाई में मारा गया था, गंधर्व के साथ लड़ाई हुई थी। उसके बाद क्योंकि राज ही मांगा था दरू ने भगवान से और स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष, तो उसने 30,000 वर्ष राज किया, और 2 शादियों का प्रमाण सुख सागर में मिलता है कि दरू की 2 शादियां हुई, और फिर स्वर्ग में गया। इसी प्रकार प्रहलाद ने 10 साल की आयु में हिरणाक और नरसिंह प्रकट हुए, दर्शन हुए, उसके बाद ब्याह करवाया। और राजा बलि जिसने 99 100 यज्ञ करी थी, 100 100 मन देसी घी की, और जिसमें स्वयं भगवान विष्णु बावना बनकर आए थे, वो राजा बलि प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन था, बैलोचन का बलि हुआ। तो महाराज कहें, और गरीबदास महाराज छुड़ानी में हुए, एक जमींदार के घर में जन्म था, 4 लड़के 2 लड़की हुई, और उनका सारा प्रक्रिया करी, बच्चे पालन पोषण किया और खेत में काम किया, परमात्मा पाया, ढोल के डंके पगाया, और यह विधि बताई कि ये रास्ता आपको बिल्कुल आसानी से पार कर देगा। अन्य साधन है सतलोक तक जाने के, और ये अन्य साधन है स्वर्ग तक जाने के, और कबीर साहब गरीबदास जी का जो नाम मंत्र है वो सतलोक ले जाने का, यानी जहां पर ब्रह्मा नहीं जा सकता, जहां विष्णु नहीं जा सकता, जहां शिव नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये सतनाम और सारनाम उपासक संत जिसको अधिकार हो वो देव है, और उसके नाम का जाप वो प्राणी गुरु मर्यादा में रह के करे तो वो जा सकता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कबीर साहब स्वयं आकर मिले थे, उनको प्रथम श्रेणी का नाम दिया था, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव जी को भी। दूसरी श्रेणी का जब नाम देने के लिए वो गए सतनाम का, तो निरंजन ने उनकी बुद्धि फेर दी, उनमें प्रगट हो गए। ब्रह्मा कहता है कि महाराज जी देखो, वेद से ज्यादा मैं नहीं मान सकता, ये प्रमाणित शास्त्र है परमात्मा के प्रगट किए हुए। कबीर साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मा, उस मालिक ने एक सूक्ष्म वेद और दिया था, लेकिन वो सूक्ष्म वेद निरंजन ने छुपा दिया, ये आप तक नहीं आने दिया, वो सूक्ष्म वेद का भेद मैं पुनः आपको देने के लिए आया हूं। नहीं माना ब्रह्मा जी भी। विष्णु जी ने भी ऐसा ही कहा, महाराज जी हमारे पास 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसके किए कर्म का, धर्म धार्मिक कर्मों में रुचि बढ़ा दें, क्योंकि गीता जी के ज्ञान से, रामायण महाभारत के पाठ से अंतःकरण साफ हो जाता है, भक्ति करने में रुचि बढ़ जाती है, काम मनोकामना पूर्ण हो, और मोक्ष कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति करने हैं। अंतिम यहां का स्वर्ग है 21 ब्रह्मांड तक। इसी प्रकार शिवजी को कहा, शिवजी ने भी वैसे महाराज का आदर बहुत किया शिव भगवान ने कबीर साहब का, लेकिन ये बात आगे स्वीकार नहीं करी। कहते हैं जी ब्रह्मा जी ने बताया वेदों में ओम तो बड़ा मंत्र नहीं और निरंजन से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। अच्छा भैया कोई बात नहीं। तो इस प्रकार जब तक सारनाम सतनाम नहीं प्राप्त होता प्राणी पार नहीं हो सकता। गरीबदास जी ने लिखा हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। वो शिव भगवान भी हमारी सेवा करता है, लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि कबीर साहब को प्रथम तो शक्ति स्वीकार कर करा जी को ना कि इसमें कोई शक्ति है, क्योंकि हम उनको एक कवि एक जुलाहा बस इससे आगे स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी लीलाओं का हमें ज्ञान नहीं हुआ। भगवान राम और कृष्ण शिव विष्णु जी को हमने क्यों परमात्मा स्वीकार किया? उनके जीवन चरित्र पढ़े, रामायण के अंदर भगवान राम की महिमा और राम कृष्ण लीला के अंदर भगवान कृष्ण की लीला बचपन से लेकर और आखिर तक हम सुनते चले गए। जिन्होंने जो उन्होंने चमत्कार किए, जो उन्होंने लीलाएं दिखाई, उन पर उनके द्वारा हम इतने आकर्षित हो गए इनकी तरफ कि ये पूर्ण परमात्मा मान लिए। महाराज ने ये नहीं कहा कबीर साहब ने कि ये परमात्मा नहीं है, ये तीन लोक के भगवान हैं, तीन लोक के साहेब हैं, और तीन लोक के परमात्माओं में जो शक्ति होती है इनमें परिपूर्ण है। कंस जैसे राक्षस को ये खूब मार सकते हैं, रावण जैसे नरभाग ने ये खूब गढ़ सकते हैं, लेकिन भाई ये जन्म मरण नहीं मिटा सकते, और भाग से ज्यादा नहीं दे सकते और भाग से कम नहीं कर सकते। और कबीर साहब क्या कर सकते हैं? ये भाग बढ़ा भी सकते हैं, ये घटा भी सकते हैं माड़े कर्मों को इनमें, और सतलोक प्राप्ति करवाएंगे, स्वर्ग नहीं जाने देंगे। यजुर्वेद के अंदर भगवान कबीर साहब की महिमा कई स्थान पर गाई गई है। सतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में 108 श्लोक हैं, जिसमें पार्वती भगवान शिव से पूछे कि भगवान आप किसका ध्यान लगाते हो, आप तो स्वयं महादेव के महादेव हो, देवों के देव हो, महादेव हो और ईशन के ईश हो, आप भी ध्यान किसका लगाओ? तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा भगवान कबीर है। वो कहती है कबीर तो हमने पहली बार सुना भगवान, अज्ञा है तो गलती खारी दुनिया। ये वो शक्ति है कि इसके बराबर इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। 108 श्लोकों में कबीर नाम की महिमा का न्यारा न्यारा वर्णन आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार अब धर्मदास के पास हम वापस आते हैं कि धर्मदास को महाराज जी समझा रहे हैं कि धर्मदास जो साधना आप कर रहे हो ये आपको पार नहीं कर सकती। प्रथम तो इतने उलझेड़े में उलझ गए कि उस काल बलि ने आपको इतना गलत रास्ता दे रखा से, और उन संतों ने कहां से ज्ञान हुआ बेचारे, उन्होंने अपने शास्त्र पढ़े और उन शास्त्रों का अनुसरण किया और वही डंडोरा आगे पीट दिया। तो कहते हैं धर्मदास ले मैं बताऊं भाई तो कितने नुकसान करके आता है, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। कैसे? गगन सुन में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे ना ही है खोज शंकर शेष। वो स्थान नहीं मिलता इनको क्योंकि वो मार्ग वो नाम वो जाप वो साधना यहां नहीं है, वो मैं देऊं भाई। सुन गगन सतगुर बसे पृथ्वी आसन थीर, और गरीब धर्मदास धोखा दिला भाई छाणो नीर और खीर। ना मैं जन्मों ना मरू ना आऊं ना जाऊं, और शब्द विहंग सुन में ना हमारे धूप ना छान। ना तो मैं पैदा होता कबीर साहब कहते और ना मैं मरता। ये प्रमाण आपको आज बताएंगे कि कैसे कबीर साहब का आना हुआ और कैसे यहां से जाना हुआ और बीच में उन्होंने कितने कितने चमत्कार आपको दिखाए। अगर हम इनकी महिमा को भगवान विष्णु यानी राम और कृष्ण की लीला से तुलना करेंगे तब इतना तो जरूर यकीन होगा आपको कि जरूर ईश्वरीय शक्ति थी। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, अमरे पिंड प्राण नहीं स्वासा। वो जिंद रूप में, जिंदा रूप में साहेब आए थे परमात्मा कबीर साहब, सतपुरुष। कहते हैं बोले जिंद सुनो धर्मदासा, अमरे पिंड प्राण नहीं स्वासा, और गर्भ योनि में हम नहीं आए, और मादर पिदर ना जननी जाए, ना मेरे मां बाप और ना किसी मां का मैं पैदा होता। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, ये जो शरीर दिखा है ना तूने, ये मेरा शब्द रूप है। और क्या दिखलावे आचार विचारा, आचार किसे कहते हैं, जैसे कर्म कांड करते हैं भाई, मूर्ति पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, ये इस प्रकार गीता जी का, भागवत का, रामायण का प्रतिदिन पाठ करना, ये आचार है, कर्म कांड है। और कर्म कांड सुरगापुर वासा, कर्म कांड से सुरगापुर जाता है और उसके बाद नरक में आ जाता है, जो नरक भोगने होते हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण की हत्या का शास्त्रों में इतना खतरनाक प्रमाण दे रखा है कि ब्राह्मण को मारे का पाप नहीं उतरता जीव का। कहते 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। आए है तुम जो रोजाना जो लीप के ना, ये लीपते हो पृथ्वी को और फिर भोजन तैयार करो उसमें, इतने पाप करते हो धर्मदास, 70 ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, इतना पाप तेरे ऊपर है, और तू नौका में पाप नहीं करता। अब धर्मदास सुन्न हो गया कतई, क्यों आंखियां देख रहा बोला क्यूकर, पहले तो वकील बने था, प्रबंधी छोड़ने गुंजाइश नहीं छोड़ दी। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण से हत्या जो हुई, और स्नान जल स्नान कर तो सोई। 70 ब्राह्मण की हत्या फिर होती है कैसे, सहस 1000 ब्राह्मण की हत्या कहां होती है, जहां तुम तीर्थ में जाकर स्नान करते हो। हमने जींद के पास पिंडारा गांव है, वहां पर तीर्थ देखा, वहां पर कहते पांडव आए थे और उन्होंने जोड़ खोजा था, और नो कहे वो मौस की बाट में देखी और बैठ के माउस ना आई, अरी बिला शराब देगा, बिला कलयुग में रोज आया करेगी। एक बात बताओ, पांडव स्वयं दुखी, एक भी काम हल नहीं हुआ उनका, और उन जोड़ खोजा, हम नान जाऊं उसमें, जब वो स्वयं सुखी नहीं हुए वहां के स्नान करने से, और हम वहां स्नान करके सुख की बाट देखें, ये उलझेड़े किसने लाए, उन अनजान लोगों ने जिन्हें मार्ग का बेरा नहीं था, अपना पीछा छुटवाने खातिर अगे आंडे जाएंगे धक्के खानते, उड़ा तेरा पीछा छुटेगा, क्योंकि सुख वो दे नहीं सकता, क्योंकि मार्ग कोई ना संत के पास। फिर उन्हें नहीं बंडा होगा, तुम फलानी जगह चला जा, फिर किसी ने गया पर बता देगा, वो बेचारा पहले तो पैसे इकट्ठे करे उधर आवे कोई ना, क्यों उसका पीछा छुटवाना, उसने गया जी जान खातर कम से कम भी 2-5 हजार रुपये चाहिए, और फिर वहां की समय काट है, फिर जावे गया पर इतना उससे कोई लाभ ना, फिर नोगे एक बार द्वारका गेड़ा और मारा, द्वारका कौन सी आड़े है, इन तीर्था बंडाया जाए इतना उसका पांडा और दोनों नुकसान होना, नुकसान हो ले मरना हो मेरे लिए इतने वो। अब हमने वो तीर्थ देखा अमावस्या के दिन, वहां पर एक फिल्म भी बनवाई हमने, ओए होए होए, वो भोली बाली आत्मा जिनको गुमगराह कर दिया वो डटे तो ना डटती, नो कति जैसे पानी उमड़का अगर नदी का, नो दुनिया कट्ठी हो से, अरिसा गंदा पानी हो जाता, उसमें गधे पानी नहीं पी सकते, और वो भोली आत्मा उसमें स्नान करके उस बेकूपा द्वारा बढ़ाई हुई बहकाई हुई, और वहां स्नान करके नो को हमारी मुक्ति होगी, हमें सुख प्राप्त होगा। तो कहते हैं ब्राह्मण से सत्या जो हुई, और जल स्नान करे तो सोई, उसमें क्यों कितने जीव रगड़ रगड़ के न्यू मसल मसल के उनका कचूमर निकले, आराम मुक्ति की बाट देखे है तेरे की। अब बिना बेरे में वायदे से जुलम पहले हम भी जाया करते, मैं सब तागरा करता, क्यों भक्ति भाव में ज्यादा लगन थी, और जो भी किताब बता देते उड़ो फुलौना एक शिव जी निकल रहा है, उड़ो जान दे बाजे, अब शिव जी के निकला मूर्ति दरी पाई हुआ किसी को उधर गया होगा। एक बताते हैं एक ने ऐसा खेल खेला उस शिव जी निकालन का कि एक के खेत में बैठा थोड़े से दिन वो महात्मा, और वहां के एक रैग बोरी चिना की दाब खुड़वा के खड़ा, बोरी चिना की दाब दी रायत ने, और उसमें एक मूर्ति धर दी शिव जी की, ऊपर 2-1 फुट 1-1.5 फुट माटी गेर दी, और फिर 6 महीना पाचा फेरा उस पर घास जमया पाया उड़े, उतनी निशानी पुक्की करेली थी। गांव डंडोरा पिटवा दिया अपने जो सेवकों द्वारा, बोला भैया अशिव जी निकलेगा परसों, उड़ा पानी गिरना शुरू कर दिया, पानी डाला दूर से बना रखा, उसने पानी का भी सिस्टम एक नाली सी बना के उसमें पानी ठोक दिया, वो चने फूल गए, फूल के चने वह शिव जी निकलने लग गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया और मार बिघन हो गया भाई उड़ते, वह शिव जी का मुंह मुंह दिखा था, इतने लोगों ने ढक दिया लोटा का मुंड गए करडे होकर गुआंडा ते डूडा पाट गया, वो करके इकट्ठा सारे नमालन वो जा से वो जा। पाछा उन्हें सोचे भाई चल बाबा जी देगा शिव जी ने तो कितने मंदिर में स्थापित कर देते हैं, वो जब उठाया तले तो वो चने गेल चिपटे आए उसके ऐतरा बुलाओ, वो फिर खोदा उसमें एक बोरी चना की ठोक रखी ठह दी। तो इस प्रकार बेवकूफ बनाकर वो शिवजी काट दिया धरती में। परमात्मा धरती में कोई पत्थर बनकर रहता है, वो सर्वव्यापक है, फिर तो इसमें इसमें भी है वो, कदे को सोते इसमें नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है, इसलिए उसको पाने का स्थान अपना शरीर है, इसमें मिलेगा और कितना पावक कोनी, और नहीं तो फिर आकार रूप में राम आए कृष्ण आए उनके देखने से कौन पार हो गया। अगर नाम बिना पीछा छूटता हो जीव का तो भगवान कृष्ण दिखरा कितना देखा था और सारे पार हो जाते दर्शन से होते, तो ये तो नाड़ी आंट पकड़ा रखी हमारे ताई और हमने को ज्ञान मिलाना इस मार्ग का। ब्राह्मण से सत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई, चौके कर्मी किट मर जाई सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। चौके में लिपो हो ना, इतने जीव हैं जो दिखते भी को ना, और वह नौके सौरे मरे हैं और तुम्हारे को बहुत पापों से। चौके कर्मी किट मर जाही सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे कोट जीव एक दिन में मारे, करें आरती संजम सेवा ये अपराध उतरे ना देवा। अरि बांति पृथ्वी के रंगा कोट अनंत कोट उड़े पतंगा, तारक मंत्र कोट जपाही वो जीव हंसा उतरे नाही। ये तारक मंत्र दिया करो फेरने को, पाप तारण का मंत्र देता हूं, राम 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 मंडारा बस एक हजार माला फेर दे। कहते हैं ये तारक मंत्र कोट जपाही और वो जीव हंसा उतरे नाही। अगर राम के नाम तय और पाप कटे तो भगवान राम ने स्वयं दंड भोगना पड़ा उस अपने किए हुए कर्म का। कैसे कि बाली भगवान राम ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था और उसका दंड उन्होंने भोगना पड़ा द्वापर युग में आके कृष्ण जी के रूप में आया और बालिया नाम के एक जीमर ने शिकारी ने जो मच्छियां पकड़ता था पहले मच्छियां भी पकड़ता था और साथ में दूसरे भी शिकार भी करने जाता था उससे वो बाली तो जो बाली था वो बालिया नाम का जी अपराधी पारधी बना और कृष्ण वही राम कृष्ण जी बनकाए उन्हें अपने स्वयं बदला देना पड़ा। तो महाराज कहें कि तारक मंत्र कोट जपाही ये जीव हिंसा उतरे नाही, ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं पूजा अर्पण सब छुटाऊं। मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूंगा भाई ये सारे ही ना अपने तीर्थ पर जान की आवश्यकता पड़े और ना ही कहीं आपको किसी प्रकार की अन्य साधना जो व्रत व्रत कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक नाम देते हैं इसका आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हमने आत्म कल्याण से ही तो मतलब है, जो भी कोई साधना हम कर रहे हैं अपने सुख सुविधा खातिर ही कर्म कर रहे हैं और वो होती भी कोई ना, उन्हें पूज्य में जा रहे हैं। जो नुकसान होना है ज्यादा पैसे वाला है लाखों का वजह है, थोड़ा सा उसकी बहस मर जाए हुआ है बतेरी, तो बंदी छोड़ के हमारी शरण में आओ, पहले तुमने यहां सुख दो, इतने सुख दूंगा कि तुम्हारे पर नावड़े कोई ना गिनने भूल जाओगे। अब तो पहले प्राणी यहां पर आते हैं दुखमर होते हैं हमारे पास इस बंदी छोड़ के दरबार में, अरे भी दूसरा होना था वो सुखमर होते हैं, वो सुखमर होते हैं कि हम कहां पहले कहां भूल गए थे, हमने पहले मार्ग क्यों ना मिला इतने दुख पा लिए। ऐसे ऐसे भक्त आए हैं लोगों 20-20 साल तक ब्रह्म माटी हो रही थी, ना घर में सुख था ना कदे बालक बीमार कदे हम दुखी और इस बंदी छोड़ की शरण माते। ये काम था, ये पहले हम चौकस करें हैं कि जब तक हमारा मन सेट नहीं होगा इतना भक्ति हो क्यों करे, तो सबसे पहले बंदी छोड़ कबीर साहब हमारे ये सारी कामों को इस स्थिति पर ले आओगे कि आपने उनकी चिंताएं बंद हो जाएगी। और चिंता बंद होगी तो फिर आप क्या करोगे, फिर गफलत करते हो भक्ति भगवान में। महाराज के हमारा ये उद्देश्य नहीं, फिर गफलत में करोगे भगवान के मार्ग में भक्ति में तो फिर नुकसान शुरू हो जाएंगे। ये सुख इसलिए देता हूं कि तुम्हारा दृढ़ विश्वास हो हमारे में कि हम जो रास्ता बताऊं सत सब आई, और फिर परमात्मा बज का अपना बेड़ा पार करवाओ। सतलोक चलो, वहां पर आपका दोबारा मरण नहीं होगा। स्वर्ग में गए प्राणी दोबारा आते हैं, ये आपने खूब पता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गीता जी का ज्ञान भी यही बतावा है कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो लिए, जन्म मरण तो मिटे नहीं। चोले बदलेंगे, कभी कुत्ते बन जाएंगे और कभी सुअर बन जाएंगे, कभी गधे बन जाएंगे, और कर्म अनुसार फिर मनुष्य भी बन जाओगे। पर भाई यह दुर्गति नहीं मिटे। यही माता शक्ति पुराण में कहती है कि हैव ग्रीवा, तेरा जन्म मरण नहीं मिटा सकती भाई, तेरा मरण तो जरूर होगा। तो उसने केवर मांगा, न्यो बोला जी मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं हैव ग्रीवता ही मरूं। अच्छा भाई तथास्तु। अब भगवान विष्णु को हैव ग्रीव का रूप बनाना पड़ा, उस माता के आशीर्वाद को भी रखते हुए। कैसे बनाया? कहते भगवान विष्णु राक्षसों से लड़ लड़कर थक कर एक स्थान पर बैठ गया, और अपने तीर की को ऐसे ठोड़ी पर लगाकर एक पहाड़ी सी पर बैठा था। अब हैव ग्रीव का न तंग ने कर दिए देवता, वो माता के पास गए, ना ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए। इन्हें बोले भाई मारे बस का तो कोई ना हैव ग्रीव मारना, इसको तो वरदान है हैव ग्रीव ही मारे, तो कहां आए? तो ब्रह्मा जी बोला चलो विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, वो कर सकते हैं इस काम को। विष्णु जी निंद्रा में गणी में। अब सोचा भी इसने उठावा कैसे, उठाओगे तो पाप लगेगा। उन्होंने एक कीड़ा छोड़ दिया उस परतंचा के ऊपर, उस तार के ऊपर जो डोरी थी ना धनुष की, किसकी खुड़का होगा चलेगा ना जब कीड़ा ऐसे ऐसे चलता है वो, तो उसकी आवाज बहुत जोर से होती है उस तार के ऊपर धनुष के ऊपर। तो महाराज की आंख खुल जाएंगी, मारा भी नाम ना होगा, इन्हें सोचेंगे कीड़ा चढ़ गया था। तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया, कहते हो कीड़े ने पहले प्रतंचा काट दी, वो तार कट गया, और कटने से उसका ठोडी ठाडी नाड़ भी कटगी भगवान विष्णु की। वह तो कितना गिराना कहां जा पड़ी, और शरीर वहां रह गया। इतना आवाज हुई कि सारे ब्रह्मंड गूंज गए। अब सारे घबरा गए, बड़ा चाला पैटा। फिर मां की आराधना करी शेरा वाली की, उसने कहा भाई नो करो, इस सर का तो बेरा ना कित गया, इसके एक घोड़ा का गर्दन काट लाओ। घोड़े की गर्दन काट लाए और उस विष्णु के सिर पर रख के उनको जीवित कर दिया माई ने, विष्णु जी को शेरा वाली ने। और वो खड़ा हुआ तो कहने लगे अभी कैसे आए ये वाख्या, उसने अपना स्वरूप तो ना देखा पर न्यू तो था सामने कौन कौन खड़े हैं, कैसे दर्शन दिए? तो माई कहन वो कहते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात बन गई है, गरीब नाम का एक राक्षस घना दुखी कर रहा है, और आप बिना वो काम कोई नहीं कर सकता। चलो अब उस हैव ग्रीव का मतलब है ऊपर गर्दन घोड़े की, तले देवता शरीर। हैव ग्रीव माने गर्दन, और ऊपर की गर्दन तो घोड़े की, और ग्रीव माने गर्दन, हैव घोड़ा, और नीचे का शरीर दूसरा। तो भगवान जब कृष्ण विष्णु ने वो हैव ग्रीव नाम का राक्षस मारा, तो कहने का भाव यह है कि जन्म मरण नहीं मिटता। तो इस प्रकार ये पाप इतने बढ़ते चले जाएंगे। और कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारा जन्म मरण मेटू पहले, तो भाई सबसे पहले इसको खत्म करूंगा और सतलोक ले जाऊंगा, सतलोक में जाने के बाद तुम्हारा दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा दुख यहां पर मरने का। आज हम अपने बच्चों के साथ में कितने सुखी हैं, हैं? और भाई आप देख रहे हो रोजाना कितनी दुर्दांत घटना हमें सुनने मिले। कलेजा दहल जाता हमारा भी किसी की सुनते हैं कि एक घर के दो प्राणी एक्सीडेंट में मर गए, और उस घर में के बचा होगा फिर? बाकी सर कूट कूट कर दीवार फोड़ देते हैं और सर फोड़ लेते हैं, पर बनता कुछ को नहीं। तो महाराज कहीं इतने बूंदे कष्ट तुमने असंख्य बार भोग लिए, और फिर भी ना सोची करते यहां से निकल जावा। और निकलने का सबसे आसान तरीका केवल बंदी छोड़ के भगवान कबीर साहब का मार्ग यानी नाम, नाम ही जीव को पार करेगा। गीता इसी का प्रमाण देती है, ओम नाम के मंत्र का भगवान गीता जी के अंदर नाम का जाप का महत्व देते हैं। राम नाम का गीता जी में कितना जिक्र नहीं है, और रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। वो नाम कितना पार करेगा, विष्णु जी की साधना जो करने वाला प्राणी विष्णु लोक में चला जाएगा नाम के जाप से। जैसे धरु और प्रहलाद ने नाम ही जाप किया, प्रहलाद तो घर में ही रहा शुरू से ही, और नाम के जाप से वही वस्तु प्राप्त की जो धरु ने वन में प्राप्त की। यहां कहते हैं कि ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सबै छुड़ाऊं, भाई खान पान में दमन प्राणी कैसे पाओ मुक्त निशानी। खाते हो ना उसमें भी जीव मरते हैं, पानी पीते हो उसमें भी जीव होते हैं, दूध से दही बनती है उसमें भी जीव होकर पैदा होकर मर जाते हैं, उसमें भी पापों से। भाई तुम पीछा क्यों कर छूटे? तो धर्मदास कहने लगे महाराज जी फिर ये पाप तो होते ही रहेंगे जब तक हम आखिर तक रहेंगे। महाराज जी कहते मैं बताऊंगा, हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, ऐसी दवाई है कि पहला तेरे पाप कर्मान फूकेगी, कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, हृदय से चनगारी आग की भाई पड़े पुराने घास। ढेर लाग रहा हो घास का चाहे 50 फुट ऊंचा और 10 किल्या में कहो सूखा घास यानी पाती वगैरह पराल इनकी दानों की, और एक चनगारी एक तिल्ली ला दो उसमें, उसने फूक के और कति गर्ती का मिला देगी, हवा आवेगी उसने ठाक भगा देगी, उससे जन जोगी नहीं रहे। तो इसलिए महाराज कहते हैं हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जो पहले पाप कर्मान काटेगा और तुम्हारे पुण्य प्रफुल्लित होंगे। ये ना ब्रह्मा के जाप से हो सके, ना विष्णु के हो सके, ना शिव के हो सके, क्योंकि ये आपको इनके नामों से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, और पाप बढ़ेंगे वो पाप भी गिले बढ़ेंगे, क्योंकि यहां दोनों भोग्य हैं पुण्य और पाप। पुण्य के लिए स्वर्ग है और पाप के लिए नरक है। जो ना स्वर्ग में भोग्य हैं ना नरक में भोग्य हैं, वो कर्म आपने इस लख 84 के गट्टे में भोगने पड़ेंगे। ये ऐसा नियम निरंजन ने बनाकर ये कानून और ब्रह्मा विष्णु में इसको दे रखा है, इसको ये बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान के कानून को कोई नहीं बदल सकता जो बना दिया गया, इसका अनुसरण करने से लाभ होगा। इसी प्रकार इन्होंने आगे गीता जी द्वारा और रामायण महाभारत के चरित्र दिखाकर यही बताया, भाई इसमें रहना है हमारे लोक में तो ये नियम तुमने निभाने पड़ेंगे, इससे तुम्हारे पाप कम होंगे और भाई पुण्य ज्यादा हो जाएंगे। पुण्य के प्रभाव से तुम काफी दिन स्वर्ग रहोगे और पाप कम होंगे तो थोड़े दिन नरक में जाना पड़ेगा, पर यह 84 का चक्कर एक बार जरूर काटना पड़ेगा। ये नियम है यहां का तीन लोक का। कहते हैं कोट जीव जल अचमन प्राणी या मैं शंक शुभ नहीं जानी, कहो कैसे विद करो अचारम, और चर लोकी का तुम सिरभारम। तू काहे का ये भगवान की भक्ति कर रहा भाई, कहो किस विद करो अचारम तेर लोकी का तुम सिरभारम, और राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जूनी जत संगा। राप्ती कहते हैं हाथी को और सूक्ष्म कहते हैं ना दिखाई दे वो जीव, यानी चीटी ले लो छोटी सबसे इकाई जो हमने दिखाई दे, ऐसी तो कीड़ी मारने का पाप है चीटी के, और ऐसे हाथी के मारने का पाप है। बाप का छोटा बेटा मरे उसने उतना ही दुख आवे, और बड्डा मरे उसमें भी इतना ही दुख आवे माँ बाप ने। इसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि में जो भी जीव छोटा मरे, चाहे वो अनजान में मरे चाहे जाने में मरे, उसके लिए उतना ही वो हत्यारा होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इतना राहत दिया इन्होंने। यहां पर एक कानून है कि जिसने गुरु बना लिया, और गुरु हो पूरा जिसको आदेश हो नाम देने का, घर घर गुरु बन बैठे उन भोली भाली आत्माओं ने चार मीठी बात बनाकर और कहते हम नाम दे देंगे, नाम का सब नबेरा राम और कृष्ण राम और कृष्ण घना ओम कर ले, ये तो कोई भी बता सके, लेकिन अधिकारी बिना युग नाम दिया हुआ फलता नहीं, ये काम नहीं करता। उस परमात्मा के दरबार में एक लिस्ट पाओगे जब आप यहां से जाओगे, उस लिस्ट में उस संत का जो यहां पर प्रमाणित है जो नाम देने का अधिकारी है उसका नाम पावेगा, उसकी फोटो पावेगी, और जब आप जाके अपने गुरु का नाम बताओगे वो पारखद सबसे पहले वो लिस्ट देखेंगे, और उस लिस्ट में थारे गुरु का नाम नहीं पाओगा, सीधा नरक में ठोक देंगे। वो नकली पासपोर्ट होगा आपका, उस नकली पासपोर्ट वहां चलना नहीं चल सकता। इसी प्रकार जैसे भगवान राम और कृष्ण विष्णु आदि का आपने जाप भी करना है, भक्ति करनी है तो उसके नुमाइंदे उस संत से नाम लो जिसको नाम देने का अधिकारी गुरु से प्राप्त हुआ हो। फिर उसका जाप करो, डट के विधिवत करो जैसे गुरु बतावे, आप स्वर्ग जाओगे। अब ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि स्वर्ग नाम इतनी बड़ी अच्छी जमाने थे कि इसके बराबर कोई वस्तु है कोई ना। अब उसकी तुलना में जब सतलोक देखा और ये ज्ञान देखा तो वो कुछ भी कौन पाया। उसके सामने इंद्र दा राज, इंद्र स्वर्ग का राजा होता है और राजा स्वर्ग भोग के इंद्र और गदा बनता है। तो गरीबदास कहे हैं इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, ओए होए होए, काग की बीट है इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज भी। और जो हमारे जैसे दो चार साल उसमें वैसे लेटन खातर जाओ अपने पुन कट्ठे करके, वो बता के लूट के लाओगे वहां से। और ये 84 चक्कर ने उकाने, कबीर साहब कहें भाई इस बखेड़े ने मेरे बिना कोई मेटनिया नहीं से, क्योंकि सतलोक की जानकारी किसी ने दिए ना शास्त्र में पाई। और वो नाम ओम नाम को ये भी महाराज भी कहते ये उत्तम नाम से 21 ब्रह्मांड तक आपको सिद्धि दे देगा, स्वर्ग देगा, ऐसी सिद्धि दे देगा कि आकाश में उड़ जाओगे, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ऋषिजन के कई चोले बना लेंगे, यहां भी दीख्या वहां भी दीख्या वहां भी दीख्या, ऐसी पता नहीं कितनी बताई, ऐसी तो बना लोगे कि पृथ्वी के ऊपर चलते दिखोगे ना, पानी के ऊपर ऐसे चलेंगे वह संत जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भाई ये मुक्ति का साधन नहीं बने, फिर जन्म मरण ना बेटा इन बात आते हैं, इस ओम के मंत्र से यो काम जरूर हो जाएगा पर लख 84 ना मिटे। और इस भारत कहते एक मंत्र और देंगे हम जिसको सतनाम कहते हैं, वो आपके यहां भी सुख देगा और सतलोक में ले जाएगा। हाँ जैसे मैं बता रहा था ना गुरु का प्रकरण था, तो गुरु का क्या काम है, उपदेश ले लिया पूरे गुरु तय, विष्णु जी का भी पूरा गुरु हो, भगवान शिव का भी पूरा साधक हो और सतलोक ले जाने वाला संत भी पूरा हो। तो पूरे का तात्पर्य है कि वो आदेश हो गुरु से कि भाई तू नाम दिया करे, तो वो लड़ी जुड़ जाती है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति, जैसे थर्मल प्लांट से लाइट आती है बिजली और आगे वो कनेक्शन उससे ठीक जुड़ा हुआ घर में तक पहुंच गया आपके, तो आपके बिजली वो काम करेगी जिसकी महिमा तुम सुना करते थे। अगर वो विधिवत नहीं आपसे जुड़ी हुई नहीं आई तो वो बिजली नहीं आपके घर में, जो बेसिक पंखे लगाए रही हो। इसी प्रकार ये परमात्मा की शक्ति ऐसे विधिवत आती है और उसके नुमाइंदे संत एक तार का काम करता है और उस संत के अंदर से परमात्मा आता है, संत के अंदर भगवान होता है। क्यों होता है कि जैसे तार में बिजली होती है। अब मान लीजिए आपने नाम लेने जाते हो और नाम दे दिया गुरुजी ने, वो के बतावेगा बीड़ी शराब मांस तमाखू कभी नहीं पीनी, भाई किसी की आत्मा नहीं दुखानी, दो दो एक टाइम भूखा रह लेना, अगर आपके भाग में स्वाभाविक कोई मिलता तो प्राप्त कर लेना, चाहे कोठी दे भगवान तने, चाहे कार दे तुझे और चाहे फैक्ट्री लावे तेरी, पर भाई उसमें नींद खराब करके मत करिए। अगर किसी की आत्मा दुखा के करेगा तो सत्यानाश को प्राप्त होगा और तेरे भाग में होगा डूंडा ठा देगा, वो भाग ने परमात्मा नहीं रखे तेरे ने, और नहीं है तो बैठ कर अपना सुखी खा ले एक टाइम, पर लोग दिखावा देख हम देखा, टेलीविजन मत खरीद जाए, अपने बच्चा ने समझा ले बेटा हमारे बाग में कोई ना, बच्चा के भी आस्था होगी ऐसी बात नहीं भगवान के नाम पर लागे पाछे। तो इस प्रकार जब गुरु के पास जाते हैं तो जब वो नाम देता है ये परख लेता है कि ये अधिकारी हो लिया कि नहीं, उसकी 100-100 बार पेटा भरता है ये बात सुन ले भाई अगर ऐसे नहीं करेगा तो आपका खत्म हो जाएगा, हमारा नाम नहीं रहेगा। तो वो समझो एक जैसे लाइसेंस होता है मोटरसाइकिल स्कूटर कार गाड़ी ट्रक चलाने का, वो लाइसेंस बनाने वाली अथॉरिटी के पास जाता है, नियम है कि जो लाइसेंस बनाने से पहले एक ट्रैफिक इंचार्ज होता है उसका, उसको आदेश है कि पहले इसकी ट्रायल ले पूरा, इसको साथ बैठा हुआ गाड़ी में और कह चला भाई गाड़ी ने, और भीड़ बांक है सारे के चला के लावे, और जब वो बिल्कुल सही चलावे सही रोड सेंस को यानी सड़क के नियमों को सही निभाता है और ठीक ठाक गाड़ी निकाल आता है उसका लाइसेंस बना दीजिए। लाइसेंस बनने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका 90% दोष माफ हो जाता है,